है, फिर 11 से 12 के बीच में प्रवचन रहता है और 12 से 12:30 श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी का महाआरती होता है और 12:30 बजे सबके लिए महाप्रसाद की व्यवस्था रहती है। तो हम सबसे विनती करते हैं कि कृपया इस संडे फीस्ट कार्यक्रम का लाभ उठाए। आज हमारे बीच प्रवचन देने के लिए उपस्थित है श्रीमान सर्वात्मा हरि प्रभु। तो सर्वात्मा हरि प्रभु 2009 में इस्कॉन संस्था से, उससे पहले इस्कॉन संस्था से जुड़े, परंतु 2009 में उन्होंने ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश किया, पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में जुड़े। 2011 में वे गोवर्धनी को विलेज शिफ्ट हुए। यहाँ आने के बाद उन्होंने अनेकों सेवाएं निभाई, उनमें से कंस्ट्रक्शन विभाग में उन्होंने बहुत अपना अच्छा तरह से योगदान दिया है। 2011 से लेकर तक पिछले कुछ सालों तक वे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में ही थे। अभी वे रिसेप्शन माने अतिथियों का स्वागत करने का जो विभाग रहता है उसमें सेवा प्रदान कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ अनेकों गाँव में जाके वे कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। विशेष रूप से डहानू जो तालुका है पालघर जिले का, वहाँ पे जाके वे प्रचार करते हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच सर्वात्मा हरि प्रभु है। तो हम पारंपरिक रूप से 3 बार हरि बोल बोल के प्रभु जी का स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरी वरधारी।
जय राधा माधव
टूटला कर दो।
जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। जयो राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय श्री हरि नाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
तो आज हम जो विषय पे चर्चा करने वाले हैं संडे फिस्ट के प्रोग्राम में, वो विषय का नाम है हमें मंदिर की आवश्यकता क्यों है। तो हमारे जो एक सीनियर भक्त है चैतन्य चरण प्रभु जी, उन्होंने बहुत ही सुंदर किताब लिखी है, तो उसी किताब से मैं बोलूँगा। तो बहुत बार लोग मंदिर में आते हैं और बड़े बड़े मंदिर देखते हैं, तो लोगों के मन में प्रश्न आता है कि इतना पैसा हम मंदिर बनाने के लिए क्यों खर्चा कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है उसकी। बाहर लोग जो है भूखे मर रहे हैं, उनको रहने के लिए मकान नहीं है, गरीब लोग जो है, तो हम मंदिर के ऊपर क्यों पैसा खर्चा करना चाहिए। तो हमें वो जब ये सब बताते हैं तो हमको लगता है कि ज़रूरत है, बाहर के लोगों के लिए भी ज़रूरत है। तो बहुत सारी संस्थाएं जो है उनके लिए कार्य कर रही है, लेकिन मंदिर भी जो है वो भी समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। उसको हमको देखना चाहिए कि क्या मंदिर जो है क्यों ज़रूरी है, हमको उसकी आवश्यकता क्या है हमारे जीवन में। तो हमारे बहुत हमें जो अभी तक पता है हमारी ज़रूरतें कौन सी हैं, जो हमें हमारे जो स्कूल में जो पढ़ाया जाता है कि हमारी ज़रूरत जो है वो है रोटी कपड़ा मकान, लेकिन ये रोटी कपड़ा मकान से भी और ज़्यादा हमारी ज़रूरती है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और ये ज़रूरतें मंदिर कैसे पूरी करती है उसके बारे में हम सुनने का प्रयास करेंगे। तो पहला फ़ायदा जो बताया है मंदिर होने, मंदिर की जो आवश्यकता है समाज में, तो उसमें पहला फ़ायदा जो है वो है मन की शांति। तो क्योंकि ये विषय मैंने चूज़ किया है क्योंकि कुछ दिन पहले हमने ढानू के भक्तों को मैं मुंबई यात्रा के लिए लेके गया था, तो उस समय हमारे जो मुंबई में जो मंदिर है, बहुत विशेष मंदिर है, गिरगांव चौपाटी हो गया, जुहू चौपाटी हो गया, फिर मीरा रोड खारगर, तो वो मंदिरों पे लेके गए थे। तो उनको मंदिरों का महत्व क्या है वो समझाने के लिए मैं ये विशेष आज का टॉपिक लिया है। तो पहली बात तो है कि मन की शांति, हमें मंदिर में जब आते हैं तो हमें मन की शांति मिलती है। तो जैसे शरीर की ज़रूरत है रोटी कपड़ा मकान, वैसे भी मन की भी कुछ ज़रूरत है, वो है मन की शांति। तो आजकल का जो अपना जीवन है बहुत ही भाग दौड़ का जीवन है और बहुत ही तनावपूर्ण है, तो उसमें हमें मन का जो स्वास्थ्य है वो उसको संभालना बहुत ज़रूरी है। और मन जो है उसमें बहुत ही उत्तेजित हो जाता है। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, तो उनका कहना है कि आज की सदी में सबसे चुनौती वाला सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है लोगों का मन का स्वास्थ्य। क्योंकि बहुत ही आजकल हम देख रहे हैं, विशेष करके जो बड़े देश जो है अमेरिका जैसे, तो उसमें लोगों को ये चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है मन का स्वास्थ्य विशेष करके। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने ये मंदिर जो है ये मंदिर बनाए। तो जब हम मंदिर में आते हैं तो हमें यहाँ पे जो विग्रह है उनके दर्शन हम लेते हैं। मंदिर में जब आते हैं हम तो कीर्तन में भाग लेते हैं, हम भक्तों के साथ संग करते हैं। तो ये सब करने से हमारा क्या होता है, जो मन के ऊपर एक तनाव है वो कम हो जाता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने जो उनके मंदिर जो बनाए वो शहरों में बनाए हैं, क्योंकि शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। और हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो है, हमारा भी जो गिरगांव चौपाटी मंदिर है और जो जुहू चौपाटी का मंदिर है, वहाँ पे हजारों लाखों लोग दिन में आते हैं, हर दिन वहाँ पे आते हैं और दर्शन लेते हैं, कीर्तन में भाग लेते हैं, और उससे वो जो उनका उनके मन के ऊपर जो तनाव है उसको कम करते हैं। तो इस प्रकार से, तो ये जिस प्रकार से कहा जाता है कि अपने अपने जीवन में जो भी जिम्मेदारियाँ हैं वो जिम्मेदारियों को अगर हमको अच्छे से निभाना है तो ये मन का तनाव जो है उसको हटाना पड़ेगा। जैसे आपको अगर कहा जाता है कि आपको कोई वजन दिया जाता है, 5 किलो का वजन आपको उठाना है, तो ये 5 किलो का उठाना है, वजन उठाना है आपको, अगर ये आपको बोला जाए कि आपको ये पूरे जीवन भर इसको उठाना है, तो हमें बहुत परेशानी हो जाएगी, हम नहीं कर सकते, बहुत बड़ा तनाव हो जाएगा हाथ के ऊपर। लेकिन वही वजन अगर हम थोड़े थोड़े ब्रेक में उठाएंगे, उसको थोड़ा समय आप नीचे रखेंगे, फिर बाद में उसको उठाएंगे, फिर क्या होगा, आपके जो हाथ के जो स्नायु है उसको थोड़ा आराम मिलेगा, फिर आप उसको कर सकते हैं, वो कार्य जो है कर सकते हैं। तो वैसे ही हमारी जो जिम्मेदारियां है उस जिम्मेदारियों के साथ साथ जो है बहुत सारी चिंताएं भी आ जाती है। ऐसे नहीं केवल हम जिम्मेदारी अपनी निभा के हम उससे मुक्त हो गए, तो बहुत सारी चिंताएं भी उसके साथ आती है। तो उससे हमें अगर बाहर निकलना है तो ये मन की शांति जो है बहुत ही जरूरी है। आजकल लोग सोचते हैं कि आजकल की ये इतनी भाग दौड़ी जो है, तनावपूर्ण जीवन है, इसमें मन का स्वास्थ्य जो है वो कहाँ प्राप्त होगा हमें। लेकिन हमको समझना है कि ये हमारी जरूरत है। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो ये मन का तनाव कम करने के लिए वो क्या करते हैं, बहुत सारे मनोरंजन जो है, कहाँ पे कोई कहाँ घूमने जाएंगे, या टेलीविज़न के सामने बैठ जाएंगे, या कोई थिएटर में जाके मूवी देखेंगे, जो भौतिक लोग हैं। लेकिन हमें देखना चाहिए कि कैसे हम हमारे जो मन की इच्छा है हम उसको पूरी करेंगे, लेकिन वो मन की इच्छा पूरी करने के बाद अगर भौतिकता से हम अपनी मन की इच्छा पूरी करेंगे तो हमारा मन जो है और भी उत्तेजित हो जाएगा। अगर आप टेलीविज़न के सामने बैठेंगे या मूवी थिएटर में जाके कोई मूवी देखेंगे तो उससे अपना मन शांत नहीं होने वाला। थोड़े समय के लिए हमको फ्रेश लगेगा, चलो अच्छा हुआ है थोड़ा जाके आए, लेकिन वापस वो इच्छाएं जो है, वो जो अनुभव है, वो जो विचार है, वो वापस मन में आते रहेंगे, या जो भी हम देखा है वो मन में आते रहेंगे, और वो भी हम हमारी इच्छाओं को और बढ़ाएंगे, वो हमारे विचारों को और बढ़ाएंगे, इसलिए वो मन को शांत नहीं करने वाले। इसलिए भगवद्गीता में बताया कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणा। कोई कोई तो कोई बोलेगा कि मुझे लग रहा है कि मैं ये करूं, मेरा मन बोल रहा है कि मैं ये चीज़ करूं, और हम करते वो, लेकिन वो हम क्यों कर रहे हैं, अपना इंद्रिय जो जो हमारी इंद्रिय है वो इंद्रिय विषयों के हम इंद्रिय विषयों के साथ उसको लेके आ रहे हैं, लेकिन इंद्रिय विषयों के साथ लेके आके जो मन है शांत नहीं होने वाला। कोई बोलेगा कि मुझे इच्छा हो रही है कि मैं कुछ खाऊं, तो हम वो चीज़ खा लेते हैं और फिर बाद में लगेगा कि अभी मन शांत हो गया, लेकिन वैसे नहीं है, बाद में वो मन जो है और हमें परेशान करने वाला है। तो इसलिए बताया कि कैसे ये जो हम भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करते हैं उसको महाशनो है ना, महाआशनो यानी एक अग्नि की तरह बताया गया। अगर अग्नि को हमको बुझाना है, अगर हमारी मन की जो इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, उसको हमको हम कोई बोलेगा कि आप वो भौतिक इच्छाओं को आप पूरी करो तो आपका मन शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं है। भगवद्गीता क्या बोलती है कि ये इच्छाएं जो है, भौतिक इच्छाएं, वो कैसी है, जो काम से उत्पन्न होती है वो एक अग्नि की तरह है। तो अग्नि में अगर हम बुझाना उसको बुझाना है तो उसमें उसको तेल डालना बंद करना पड़ेगा या ईंधन डालना बंद करना पड़ेगा उसको, लेकिन हम वो इच्छाओं को पूर्ति करेंगे तो उसमें ईंधन डालने जैसा है वो, और वो अग्नि जो है बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी। तो इस प्रकार इसलिए हमें ये एक बहुत ही सुंदर अवसर जो है और एक बहुत ही सुंदर मौका यहाँ पे मिलता है कि कैसे मन को हम शांति जो है मंदिर में आके प्राप्त करें। तो ये पहला फायदा जो है, मन की शांति जो है मंदिर में हमें मिलती है। जो दूसरा फायदा जो बताते हैं, कैसे जो मंदिर जो है हमें शिक्षा प्रदान करता है, तो ये आध्यात्मिक शिक्षा जो है ये हमें मंदिर से प्राप्त होती है। तो कोई बोलेगा कि अरे आध्यात्मिक शिक्षा है, लेकिन आज के जो जो आधुनिक विज्ञान का ये जो युग चल रहा है, इसमें ये आध्यात्मिक शिक्षा किस लिए चाहिए हमें, इसकी क्या ज़रूरत है आध्यात्मिक शिक्षा की, क्या काम करेगी वो। लेकिन ये जो आध्यात्मिक ये जो आधुनिक शिक्षा है हमें जो शिक्षा दे रही है, वो शिक्षा जैसे उदाहरण के लिए कोई मेडिकल कॉलेज में जाता है और मेडिकल कॉलेज में जाके वहाँ पे अपनी मेडिकल जो है डॉक्टरी पूरी करता है, तो डॉक्टरी पूरी करने कर वो करते समय उसको बताया जाएगा कि कैसे उसको पेशेंट को ठीक करना है, लेकिन उसको ये नहीं बताया जाएगा कि उसको पेशेंट को क्यों ठीक करना है, तो केवल उसको बताया जाएगा कि आपको पेशेंट को कैसे ठीक करना है। तो ये आधुनिक शिक्षा हमें सिखाएगी। लेकिन आजकल हम देखते हैं बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर आज अपने पेशेंट्स को कैसे देखते हैं, एक अपना पैसा बनाने का मशीन के रूप में देखते हैं। और उनको बहुत सारे टेस्ट बोलते हैं कि आप ये टेस्ट करो वो टेस्ट करो, उनको बार बार बुलाते रहेंगे, उनसे पैसा निकालते रहेंगे। और लोगों के बारे में उनके लोगों के मन में भी उनके बारे में जो जो चित्र है वो गलत हो गया है। तो इस प्रकार से जो अगर हमारे पास केवल आधुनिक शिक्षा होगी, आध्यात्मिक शिक्षा नहीं होगी, तो हम समाज में शोषण ही करेंगे, लोगों का शोषण ही करेंगे उनको। तो अब कोई भी, केवल डॉक्टरी नहीं, अब कोई भी फील्ड लो, वो फील्ड में अगर हमारा उद्देश्य केवल पैसा बनाना है, तो उद्देश्य मेरा केवल पैसा बनाना ही है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे जो कस्टमर है, क्लाइंट है, हम उनका क्या करेंगे, शोषण ही करेंगे। तो इसलिए ये आध्यात्मिक शिक्षा जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हमें बताती है कि हमें केवल हमें पैसा ही नहीं कमाना है, हमें लोगों की सेवा भी करनी है। इसलिए हमारा जो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल जो है मीरा रोड में, तो वहाँ पे लोगों को केवल उनको शारीरिक इलाज नहीं दिया जाता, उनको एक मानसिक और एक आत्मा के तौर पे जो इलाज है वो भी दिया जाता है। तो वहाँ पे स्पिरिचुअल केयर डिपार्टमेंट है, और वहाँ पे जो लोग आते हैं उनका जब वो अनुभव शेयर करते हैं तो बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा लगा, और वो बार बार वहाँ पे आते हैं। मेरा उनको मालूम है कि ये डॉक्टर जो है बहुत ही अच्छे हैं, ये मुझे कुछ गलत दिशा नहीं दिखाएंगे। तो इसलिए ये आध्यात्मिक शिक्षा जो है हमारे जो मनुष्य की जो निम्न स्तर की जो प्रवृत्तियाँ हैं हमें उससे बाहर निकालती है। तो इसलिए ये आध्यात्मिक शिक्षा जो होनी जो चाहिए, जो मंदिर हमें प्रदान करता है, वो बहुत ही ज़रूरी है। और इससे जो है सेवा की संस्कृति, कि हमें समाज के प्रति, लोगों के प्रति सेवा करनी है, तो वो जो संस्कृति है वो संस्कृति हमें आध्यात्मिक शिक्षा जो है उससे प्राप्त होती है। इसलिए बताया गया है कि ये आध्यात्मिक शिक्षा जो है बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कोई व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति बोलेगा कि तो अगर हमको लोगों के प्रति अच्छा ही करना है तो हमें आध्यात्मिक शिक्षा की क्या जरूरत है, हम लोगों को बताएंगे, समझाएंगे उनको कि आप दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करो, दूसरों के साथ अच्छा उनको ट्रीटमेंट दो, तो जिससे कि आपको भी वैसा ही बर्ताव मिलेगा, तो ये खाली समझाएंगे उनको। तो हमें समझना चाहिए कि केवल हम खाली ये चीज़ समझ के कि दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना है, दूसरों के साथ अच्छा रहना है, दूसरों के साथ अच्छा करना है, उनका शोषण नहीं करना है, खाली ये चीज़ हमको समझ के हम लंबे समय तक हम किसके साथ अच्छा नहीं कर सकते। तो इसलिए जैसे कोई व्यक्ति अगर ट्रैफिक के नियम का पालन करना है, तो ट्रैफिक के नियम जो है, अपनी अगर यात्रा सुरक्षित करनी है तो हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना पड़ेगा, बराबर है। तो ट्रैफिक के नियम पालन करते समय केवल हमारा उद्देश्य हमारी यात्रा सुरक्षित करना ही नहीं है, हमारी यात्रा जो हमारे गंतव्य स्थान पे पहुंचना, ये भी हमारा उद्देश्य है, बराबर ना। लेकिन ये जो आधुनिक शिक्षा जो है ये हमें बताती नहीं कि हमें वो बोलती है कि आप अच्छा करो, हम लोगों को बताएंगे भी, लेकिन हमारे जीवन का ध्येय क्या है ये आधुनिक शिक्षा नहीं बताएगी हमको। तो जैसे कोई व्यक्ति अगर ट्रैफिक के नियमों का पालन करेगी, लेकिन उसको अगर लगेगा वो व्यक्ति बहुत ही अच्छी तरह से ट्रैफिक के नियमों का पालन कर रही है, लेकिन उसको अगर लगेगा कि मुझे मेरे गंतव्य स्थान पर पहुँचने के लिए देरी हो रही है और वहाँ पर कोई पुलिस वाला भी नहीं है, तो उसका मन बोलेगा, उसको प्रलोभित करेगा कि चल भाई थोड़े नियम तोड़ देते हैं, आज थोड़ा जल्दी पहुंचना है, आज बहुत लेट हो रहा है, मुझे जाना है जल्दी, है ना। तो इस प्रकार से तो ये आधुनिक शिक्षा जो है हमें बताती है, हमें केवल सेवा की संस्कृति नहीं, बल्कि हमें एक कैसे हमारे जीवन में जो है ये नियम पालन करके हमें लो जो अपने जीवन का जो ध्येय है वो कैसे समझना है वो भी हमें आधुनिक शिक्षा बताती है। तो केवल हमारे लोगों का पूछेंगे आपके जीवन का ध्येय क्या है, आप लोगों को पूछेंगे तो लोग क्या क्या बताएंगे कि मेरे जीवन का ध्येय है धन प्राप्त करना, मेरे जीवन का ध्येय है नाम प्राप्त करना, शोहरत प्राप्त करना। तो कोई बोलेगा कि अगर आपके जीवन का ध्येय वही है धन प्राप्त करना, नाम प्राप्त करना, शोहरत प्राप्त करना, तो आप जो है ये जो नैतिकता का जीवन है वो जीवन क्यों जिएंगे? अगर नैतिकता का जीवन में जीऊंगा तो ये जीवन मुझे धन प्राप्त करने में, नाम प्राप्त करने में एक बाधा बनेगी। तो बिना नैतिकता का जीवन पालन करके मैं और धन कमाऊंगा और मैं जीवन में नाम कमाऊंगा। तो इस प्रकार से, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा जो है हमें बताती है कि हमें हमारे जीवन का ध्येय क्या होना चाहिए। तो भौतिक जीवन में हम हर एक व्यक्ति जो है वो आनंद की खोज में, मुझे आनंद कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा आनंद, बराबर ना? तो बहुत सारे लोग यहाँ पे गेस्ट आते हैं, घूमने के लिए आते हैं कि यहाँ पे कुछ आनंद मिलेगा, कुछ अच्छा देखने मिलेगा हमें, बराबर ना? तो वो उद्देश्य से हम आते हैं जीवन में, इस संसार में। और हर एक व्यक्ति, क्योंकि उसका स्वभाव ही है आनंद प्राप्त करना। तो लेकिन बताया गया है कि कैसे हम, अगर ये शरीर के स्तर पे केवल आनंद प्राप्त करेंगे तो वो आनंद जो है वो आत्मा तक नहीं पहुंचता, तो उसमें आत्मा जो है भूखी रह जाती है। जैसे उदाहरण श्री प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कार का, अगर आप कार को पेट्रोल डीजल डालते रहेंगे तो कार थोड़ी समय तक चलती रहेगी, लेकिन उसके अंदर जो ड्राइवर बेटा है अगर उसको आप नहीं खिलाएंगे तो क्या होगा? भले आप कार में कितना ही पेट्रोल डीजल डालते रहेंगे तो कार चलेगी क्या? नहीं चलेगी। वो ड्राइवर को भी उसका खाना खिलाना पड़ेगा। वो ड्राइवर को शक्ति प्राप्त जो होगी वो डीजल या पेट्रोल से नहीं होगी। तो उसी प्रकार से भौतिक स्तर पर हम जो भी आनंद प्राप्त करेंगे वो शरीर के स्तर पर ही रहेगा, वो आत्मा के स्तर तक नहीं पहुँचेगा वो, इसलिए हम भूखे ही रहेंगे। तो इसलिए ये आध्यात्मिक शिक्षा जो है वो हमें बताती है कि हमारे जीवन का ध्येय क्या होना चाहिए, हमें क्या प्राप्त करना है जीवन में। इसलिए श्रीमद् भागवतम भी बताता है कि कैसे हम केवल मन के स्तर पे रहेंगे, केवल हम आधुनिक शिक्षा लेके हम सोचेंगे कि मुझे, मैं अच्छा सबके लिए अच्छा करूँगा, तो वो नहीं हो सकता। तो श्रीमद् भागवतम बताते कि यस्यास्ति भक्तिर भगवती भगवती अकिंचना सर्वेर गुणे सत्र समासते सुरा हराव भक्तोस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सती धावतो भई। कि बताया गया कि कैसे जो व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है उसके अंदर जो है उसके अंदर देवी देवताओं के सभी गुण उसके अंदर आ जाते हैं, लेकिन जो अपने मन के अनुसार कार्य कर रहा है वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति अपने मन के रथ पे जाके कार्य करे। जब उसको मन बोलेगा कि अरे ये अच्छा है तो वो करेगा, अगर उसका मन बोलेगा कि ये अच्छा नहीं है तो वो नहीं करेगा, है ना? तो बहुत सारे लोग जो है कुत्ते की सेवा करते हैं, है ना? आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है समाज में कि हमें कुत्तों की सेवा करनी है। बहुत कोविड में भी जो है बहुत सारे मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग आए कि जो सोचते थे कि अरे कुत्तों को खाना कहाँ से मिलेगा कोविड में, क्योंकि सब लोग घर में बैठे हैं तो इनको खाना नहीं मिल रहा है, ये भूखे हैं कुत्ते। तो ये लोगों ने क्या किया, जैसे ही थोड़ा सा कोविड ये हो गया तो घर में खिचड़ी बनाते थे, लोग जाके रास्ते पे जाके कुत्तों को खिचड़ी खिलाते थे। लेकिन वो लोग जो है कुत्तों के प्रति उनको उनका उनकी भावनाएं हैं, लेकिन बाकी जो जीव है उनके प्रति उनकी भावना नहीं है। कोई देखेगा कि अरे ये कुत्ते के प्रति थोड़ा दुर्व्यवहार कर रहा है तो उसको तुरंत वो क्या करेंगे, उसका कुछ वीडियो लेंगे, उसको पोस्ट करेंगे, अरे कैसे देखो ये कुत्तों के साथ बर्ताव करे। लेकिन कोई देखेगा कि अरे वहाँ पे दूसरे पशु भी है, उनके साथ भी कुछ बर्ताव गलत व्यवहार हो रहा है, आप उनके साथ देखिए। तो ये लोग जो है दिन में कुत्ते की सेवा करेंगे, रात में जो है कुछ मांसाहार करेंगे, है ना, किसी प्राणी की हत्या करके उसका मांस खाएंगे। क्यों? उसको भावनाएं नहीं है क्या दूसरे प्राणियों को? तो ये मन के स्तर पे कार्य करने जैसे हो गया। तो हमें सीखना चाहिए कि ये आध्यात्मिक शिक्षा, तो नैतिकता जो क्या है, ये नैतिकता क्या है, हमें अपने मन से नहीं सीखना है, हमें कहाँ से सीखना है, शास्त्र से सीखना है। तो ये शास्त्र हमें बताएंगे, गीता भागवत हमें बताएंगे कि नैतिकता क्या है, और उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। तो जब आध्यात्मिक शिक्षा हम प्रदान करेंगे तो उसमें हमें बताया जाएगा कि हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम उत्पन्न, उसको उत्पन्न करना है। और जब हम भगवान के प्रति जब वो प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, तो भगवान तो बोलते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, कि हर एक जीव जो है वो मेरा अंश है। तो वो मनुष्य के योनि में हो, या कोई पशु के योनि में हो, या कोई पंछी के योनि में हो, या पानी में पानी के कोई जीव है उसी उसके योनि में हो। तो हर एक जीव जो है वो कौन है, उसके अंदर जो आत्मा है वो आत्मा जो है भगवान का अंश है। तो हमें, तो हम जो है जब ये ज्ञान प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, ये आध्यात्मिक शिक्षा जब प्राप्त करेंगे, तो असलियत में जो है हम नैतिकता का जो परिपूर्णता से जो है उसका अपने जीवन में पालन करेंगे। तो इस प्रकार से, तो ये आध्यात्मिक शिक्षा जो है हमें जब मंदिर में हम आते हैं तो मंदिर में हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से पहला जो फायदा है मंदिर का, जो हमारी जरूरत है वो क्या है, मन की शांति। दूसरा जो बताया मैंने वो क्या है, आध्यात्मिक शिक्षा। तीसरा फायदा जो बताया है वो है, जब हम मंदिर में आते हैं तो हमें जैसे मंदिर जो है वो केवल एक विश्वविद्यालय की तरह नहीं है, है ना। जैसे हमने बताया शिक्षा, जो आध्यात्मिक शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, है ना, तो यहाँ पे ये केवल विद्यालय ही नहीं है, ये मंदिर जो है ये एक हमारी जो रोगग्रस्त मानसिकता है उसको भी ठीक करता है। तो ये मानसिकता जो है, तो दूसरों के प्रति जब हम अनुचित और अनैतिक व्यवहार जब करते हैं, तो ये शास्त्र हमें बताता है कि वो व्यवहार जो है वो व्यवहार किसकी वजह से हो रहा है, हमारी रोगग्रस्त मानसिकता की वजह से। और उसका इलाज जो है, उसकी जो दवाई है वो हमें मंदिर में प्राप्त होती है। तो दूसरों के प्रति अनुचित व्यवहार और जो अनैतिकता का व्यवहार जो है वो हमारी रोगग्रस्त मानसिकता की वजह से है, और उसकी जो दवाई है वो हमें मंदिर में प्राप्त होती है। और ये अनुचित व्यवहार जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, अपने हृदय के जो अनर्थ है, अपने हृदय में जो अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो अनर्थ है, 6 अनर्थ बताए, वो उसकी वजह से हम दूसरों के प्रति अनुचित व्यवहार करते हैं। तो जैसे कोई जिसके हृदय में काम वासना है, तो हम देखते हैं कि वो काम वासना से पीड़ित है, तो हम देखते हैं बहुत समाज में बलात्कार और ये सब चीज़ें होती हैं। जिसके अंदर लोभ है, पैसे के लिए लोभ है, तो हम देखते हैं बाहर भ्रष्टाचार हो रहा है। जिसके अंदर क्रोध है, तो हम देखते हैं कि वो व्यक्ति जो है दूसरों के प्रति हिंसा कर रही है, अच्छा व्यवहार नहीं कर रही। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है उसका कारण क्या है, हमारे हृदय की जो मलिनता है, वो रोग जो हमें लगा जड़ा है अंदर से, और उसकी जो दवाई है ये हमें मंदिर में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से कैसे ये जो मन का संक्रमण जो है, जो इन्फेक्शन है, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, और वो मंदिर में आके, और मंदिर में आने के बाद वो इन्फेक्शन से तो ठीक होंगे ही हम, लेकिन हम खुद ठीक हो जाएंगे, और दूसरों के प्रति भी जो व्यवहार होगा हमारा वो अच्छा रहेगा। तो उदाहरण के लिए श्रील प्रभुपाद जी का उदाहरण बताया जाता है कि श्रील प्रभुपाद जी जो है 1960 के दशक में जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, और उस समय वहाँ पे जब अमेरिका गए थे तो वहाँ पे हिप्पी कल्चर वहाँ पे चल रहा था। तो वहाँ उस समय के जो अमेरिका में जो नौजवान थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पूरी तरह से प्रतिकूल संस्कृति को अपनाया था। उन्होंने जो भी सामाजिक संस्कृति है वहाँ की, उसका उन्होंने क्या किया था, पूरा छोड़ दिया था उसको। तो समाज ने उनको छोड़ दिया था, और ये बच्चों ने क्या किया था, समाज को छोड़ दिया था। तो इस प्रकार से तो पूरी तरह से उन्होंने प्रतिकूल संस्कृति जो है उसको अपनाया था। और वहां की जो सरकार है वो सरकार को नहीं समझ रहा था कि ये बच्चों के प्रति क्या करना चाहिए हमें। और वो सरकार के पास सब कुछ था, उनके पास पैसा था, उनके पास लोग थे, उनके पास जो है विज्ञान था, सब कुछ था, टेक्नोलॉजी थी, सब कुछ था, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये बच्चों को कैसे ठीक करें हम, ये बच्चों के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे कि उनका जो रोग जड़ा है उनको, जो प्रतिकूल संस्कृति को उन्होंने अपनाया है उससे कैसे बाहर निकलेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी जब वहां पे गए तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, उनको प्रभुपाद जी ने उनको ये हरिनाम दिया। प्रभुपाद जी के पास कुछ नहीं था वहां पे, उनके पास कुछ पैसे भी नहीं थे। एक जो रूम, छोटी सी रूम उन्होंने ली थी 26 सेकंड एवेन्यू वहां पे जो रूम ली थी उसके भी पैसे उनके पास पैसे नहीं थे, उसलिए सस्ती रूम उन्होंने उनको वहां पे मिली और वहां पे जाके उनके साथ रह रहे थे प्रभुपाद, क्योंकि दूसरा अच्छी रूम के लिए देने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी वहां पे जाने के बाद, एक टॉमसिन स्क्वायर पार्क करके जगह है, तो वहां पे जाके कीर्तन करते हैं, एक पेड़ के नीचे बैठ के कीर्तन करते हैं। और कीर्तन करने के बाद ये बच्चे जो है जिन्होंने हिप्पी कल्चर संस्कृति को अपनाया था, प्रतिकूल संस्कृति को अपनाया था, वो बच्चे उनके साथ वहां पे आते हैं, प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे, तो कोई अपनी गिटार लेके आता है, कोई हारमोनिका लेके आता है, तो वो भी बजाते हैं वहां पे, नृत्य करते हैं और उनको बहुत ही अच्छा लगता है। चलो कीर्तन प्रभुपाद जी का कीर्तन बहुत ही अच्छा लगता है। फिर प्रभुपाद जी उनके लिए जो है भगवद गीता जो है पाठ उनके लिए लेते थे, तो हफ्ते में एक दो तीन बार वो लेते थे वहां पे। और फिर धीरे 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 उनके अंदर क्या हो गया, वो बदलाव हो गया उनके अंदर। तो ये बदलाव जो है हमें, जब आध्यात्मिकता को हम अपनाते हैं और ये जो दवाई है हरिनाम की जो हमें मंदिर में प्राप्त होती है उसको जब लेते हैं तो हमारे हृदय का जो रोग है वो रोग से हम ठीक हो सकते हैं। तो ये हमें मंदिर में प्राप्त होता है। तो इसलिए जैसे इस्कॉन का एक प्रिजन प्रीचिंग मिनिस्ट्री है, तो कारागार में जाके प्रचार भी करते हैं इस्कॉन के लोग, तो बहुत सारी जो मंदिर है ये कार्य करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, जो लोगों ने नशापान और बाकी सब ये सब चीज़ें करते थे और बहुत सारी बुरी आदतों में फंसे हुए थे, तो वो लोग जो है जो कारागार में थे और जब वो हरे कृष्णा के संपर्क में जब आते हैं तो उनके जीवन में वो पूरा परिवर्तन लेके आते हैं, परिवर्तन हो जाता है उनके अंदर। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने कारागार में रहते हुए हरे कृष्णा के संपर्क में आ गए, वहाँ पे वो गीता भागवत उन्होंने पढ़ना चालू किया, हरिनाम का जब प्रिजन में कारागार में उन्होंने चालू किया, और फिर जब बाहर वो निकले वहाँ से तो वो मंदिर से जुड़ गए, और मंदिर में जुड़ने के बाद उन्होंने कौन सी सेवा ली, उन्होंने भी वही सेवा ली जो वो जहाँ पे थे कारागार में थे, तो उन्होंने भी जाके प्रिजन जो प्रीचिंग जो है वो उन्होंने ज्वाइन किया, कि वो लोग सोचते थे कि कैसे हमें भी जाके जो लोग कारागार में है उनको मदद की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि मुझे वो मदद प्राप्त हुई तो मुझे भी जाके ये लोगों के लिए कुछ करना है। तो इस प्रकार से तो लोगों के अंदर जो बदलाव है, ये बदलाव जब हम हरिनाम को जब लेंगे तो वो हमें प्राप्त होगा। तो ये हरिनाम जो है कैसे काम करता है, ये जब जो है कैसे काम करता है, तो जैसे शास्त्र में बताया कि अभिन्नत्वाद नाम नामिनो, है ना। तो ये जो नाम है, भगवान का जो नाम लेते हैं हम, हरे कृष्ण, विशेष करके ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है, तो ये नाम जो है, ये नाम क्या है, अभिन्नत्वाद नाम नामिनो। तो ये नाम और नामिनो यानी स्वयं भगवान जो है ये एक दूसरे से अभिन्न है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वाद नाम नामिनो। तो ये नाम और नामी जो है ये दोनों अलग है। जैसे हम कोई आम का अगर जप करेंगे, इस भौतिक संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जो है, कोई भी भौतिक नाम है उसका जप करेंगे तो हमें वो प्राप्त नहीं होने वाला। जैसे हम आम अभी आम का सीजन चल रहा है तो आम का जप करते रहेंगे तो हमें आम का स्वाद जो है वो हमारे जीवा पे आने वाले नहीं है, या हमें पता नहीं चलने वाला कि आम कैसे, उसका टेस्ट क्या है। लेकिन हम भगवान का नाम जब जब करते रहेंगे तो क्या होगा, हमारा हृदय तो शुद्ध होगा ही, और उसके साथ हमें भगवान के जो रूप है, गुण है, लीलाएं हैं, उन सब सब कुछ क्या होगा, हमें प्रकट हो जाएंगे, और अपना जो मन का जो संक्रमण है, इन्फेक्शन जो है, उससे हम ठीक हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी दवाई जो है, ये दवाई हमें बताई गई है। तो कैसे, जैसे उदाहरण दिया जाता है कि कैसे इसको कैसे समझ सकते हैं कि ये नाम जो है कोई साधारण नहीं है। हम जो भगवान का नाम लेते हैं, विशेष करके ये हरे कृष्ण महामंत्र जो इस कलयुग में बताया गया है, ये कोई साधारण नहीं है। जैसे कोई माँ जो है अपने बच्चों को बोलती है, कोई रूम में बहुत सारे कागज पड़े हुए हैं, तो माँ बोलती है कि अरे, बच्चों को बोलती है और बोलती है कि उसको कि ये जो जितने भी कागज पड़े हुए हैं उसको आप क्या करो, फेंक के, उसको फाड़ के आप उसको डस्टबिन में डाल दो, कचरे के डब्बे में डाल दो। तो बच्चा क्या करता है, चलो माँ ने बताया है, तो हर एक कागज जो है उसको फाड़ रहा है और कचरे के डब्बे में डाल रहा है उसको। लेकिन माँ जो है वो देखती है, अरे वो कागज के साथ साथ उसका ध्यान जाता है कि वहां पे 500 रुपए की नोट भी पड़ी है ना? और वो देखती है कि वो बच्चे ने जो है 500 रुपए की नोट उठाई है और अभी उसको फाड़ने वाला है। तभी माँ क्या करती है, उसको बोलती है रुक जा ना? और बच्चा बोलता है अरे क्या हो गया, बोलती है कि अरे ये कोई साधारण कागज नहीं है, ये जो है 500 रुपए की नोट है ये। तो बच्चे को तो समझता नहीं क्या है ये 500 रुपए, क्या होता है नोट, क्या होती है, उसको छोटा है, उसको मालूम नहीं है। तो उसी प्रकार से, लेकिन जब उसको माँ बोलती है कि जाके ये नोट लेके जाके आप बाजार में जाओ और बाजार में आप उसका चॉकलेट लेके आओ, और वो जाता है 500 रुपए की नोट लेके, और उसको जब देता है दुकानदार को तो उसको 500 चॉकलेट भी मिलते हैं उसको, तब उसको समझता है कि ये नोट जो है कोई साधारण नहीं है, बहुत ही कीमती, ये केवल पेपर जो है, ये पेपर कोई साधारण पेपर नहीं है, इसकी बहुत ही कीमत है। तो उसी प्रकार से हमारी जब चेतना विकसित नहीं है, तो उस समय में जब हमारे अंदर बहुत सारा ये जो इन्फेक्शन है अंदर रहेगा, काम क्रोध का, जब तक ये ठीक नहीं होता, तब तक हम हरिनाम की महिमा जो है, ये नाम क्या है, ये दवाई कैसे काम कर रही है मेरे ऊपर, हम समझ नहीं पाते, लेकिन वो कार्य कर रही है अंदर अपने। तो उसी प्रकार से ये जो अविकसित चेतना वालों को इसकी महिमा नहीं समझेगी, लेकिन हमें उसका अभ्यास करते रहना पड़ेगा। और जब अभ्यास करते 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 क्या होगा, हमारी जो अंदर का जो अंदर अंदर का जो इन्फेक्शन है वो सब ठीक हो जाएगा। और इसकी जो, जैसे बोलते हैं कि ना, कि भगवान जो है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप जब नाम उच्चारण करते हैं तो वो कृष्ण राम जो है आपके जिह्वा के ऊपर प्रकट हो जाते हैं। जब हम हरे कृष्णा बोलते हैं तो अपने जिह्वा के ऊपर वो प्रकट हो जाते हैं, तो उतनी ताकत है उसमें। लेकिन अभी हम समझ नहीं पा रहे कि उसकी ताकत कितनी है, लेकिन जैसे हम नाम जप करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो क्या होगा, वो जो अंदर का इन्फेक्शन है वो ठीक होते जाएगा, और उसकी जो रुचि है वो मुझे समझने लगेगी, आती रहेगी, फिर नाम के अंदर रुचि आती रहेगी। और फिर बाहर का कोई व्यक्ति देखेगा हमें तो बोलेगा, अरे ये क्या कर रहे हैं लोग, हर दिन केवल अपनी जपमाला लेके ही घूमते हैं, दूसरा कुछ काम है कि नहीं इनको। लेकिन उनको पता नहीं चलेगा, अरे इनको नाम में कितना रस आ रहा है, कितनी रुचि आ रही है इनको, है ना। तो इस प्रकार से, तो ये दवाई है। तो ये हम मंदिर में जब आएंगे तो ये दवाई जो है, ये दवाई हमें प्राप्त होगी। तो मंत्र जो है, मनस्त्रायते इति मंत्र, है ना, जो अपने मन का उद्धार करता है। तो ये ध्यान जो है, अलग अलग ध्यान बोलते हैं, तो ध्यान हम लगा कर बैठेंगे तो ध्यान, कोई शारीरिक स्तर पे ध्यान करके बैठेगा, कोई अपने श्वास के ऊपर ध्यान करेगा, कोई प्रकाश के ऊपर ध्यान करेगा। लेकिन ध्यान का जो सर्वोच्च स्तर जो है, ये सर्वोच्च स्तर कौन सा है, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप, जप ध्यान, है ना, ये सर्वोच्च स्तर है महामंत्र। तो ये ध्यान को हमें प्राप्त करना है। तो ये ध्यान हमें मिला है, हम जब मंदिर में आते हैं तो हमें ध्यान मिलता है। तो ये जप हमें क्या करता है, क्योंकि हमारा इस भौतिक संसार का एक नियम है, वो नियम क्या है, एक स्थायी नियम है भौतिक संसार का, वो क्या है, बदल। तो हर एक चीज, हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति जो है, हर एक क्षण वो क्या हो रही है, बदलते जा रही है, उसमें बदल हो रहा है, बदल हो रहा है, बदल हो रहा है। तो हमारा मन अगर इस भौतिक संसार की वस्तुओं के ऊपर, इस भौतिक संसार के लोगों के ऊपर लगा रहेगा तो क्या होगा? तो वो वस्तु नहीं रहेगी, वो व्यक्ति नहीं रहेगी, तो हमें बहुत पीड़ा होगी, दुख होगा। लेकिन ये जब ध्यान जो है ये क्या करता है हमें, ये हमें जो परिवर्तनीय विषय जो है वहां से हमको क्या करता है, जो अपरिवर्तनीय विषय है उसको मन को स्थिर करता है, वहां पे मन को स्थिर करता है। तो ये अपरिवर्तनीय विषय कौन सा है? ये भगवान का नाम का जप, ये अपरिवर्तनीय विषय है। तो हमें अपने मन को इस अपरिवर्तनीय विषय में लगाना है जो कभी भी नहीं बदलती, इस भौतिक संसार का जो समय है उस पर कार्य नहीं करता, तो हमें उसके ऊपर अपना मन लगाना है। तो इस प्रकार से ये जो दवाई है, ये दवाई भगवान के नाम का जप, ये हमें यहाँ पे मंदिर में आने के बाद प्राप्त होगा। और फिर बताया गया कि कैसे, चौथा फायदा जो बताया है वो है अपना शुद्धिकरण, है ना। तो केवल हमें ये आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करके केवल हमको बुराई से अच्छाई तक नहीं आना है, केवल अच्छे स्तर पे नहीं आना है, लेकिन वो अच्छे स्तर से भी हमें आगे उठना है। तो अच्छे स्तर से भी हमको बेहतर बनना है, और वो बेहतर से भी हमको और श्रेष्ठ बनना है। तो ये श्रेष्ठत्व को हम कब प्राप्त करेंगे? जब अपना हृदय जो है शुद्ध होगा। तो वो शुद्धिकरण जो है ये हमें भगवान का नाम जप जो है वो दिलाता है। तो हमारा हृदय जब शुद्ध होगा तो ये हृदय की शुद्धि जो है, ये हृदय की शुद्धि एक चाबी की तरह है। और वो चाबी क्या करती है? अपने हृदय के अंदर जो आनंद का जो खजाना है वो खजाने को खोल देती हो। तो इस प्रकार से, तो वो आनंद को, खजाने को कब प्राप्त करेंगे हम? जब अपने हृदय जो है वो शुद्ध हो जाएगा। तो वो व्यक्ति जो है जिसने अपने हृदय के जो आनंद के खजाने को प्राप्त किया है, वो व्यक्ति एक जगह पे बैठ के, उसको 100 जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, घूमने की जरूरत नहीं है, वो एक जगह पे बैठ के संतुष्ट हो जाएगी, आनंद प्राप्त करेगी वो। तो इस प्रकार से, लेकिन जो व्यक्ति अपने अंदर हृदय के अंदर जो व्यक्ति आनंद प्राप्त नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति अंदर से खोखला है, तो वो व्यक्ति देखेगा कि बाहर बाहर की चीजों में वो देखेगा मुझे आनंद प्राप्त होगा। तो उसको लगेगा, अरे मुझे ये मोबाइल प्राप्त होगा, मुझे ये जो है नाम प्राप्त होगा, मुझे ये वस्तु प्राप्त होगी, मुझे ये व्यक्ति जो है इससे अगर प्रेम करूंगा तो मुझे आनंद प्राप्त होगा, तो ऐसे लगेगा। तो उनको उनकी तरफ वो झुकाव रहेगा उसको। और वो व्यक्ति जो है जो अंदर से खोखला है, बाहर की चीजों में आनंद जो ढूंढ रही है, और वो व्यक्ति फिर बाद में उसको जो है और पीड़ा मिलेगी, और दुख मिलेगा उसको, और वो जो है दूसरों का शोषण करेगा जो बाहर की चीजों में आनंद ढूंढ रहा है। तो वो जब ऐसी व्यक्ति जिसने अपने अपने हृदय को शुद्ध नहीं किया है, जिसको आनंद की प्राप्ति नहीं हुई है, तो वो व्यक्ति जब कोई दूसरे लोगों से मिलता है, वो दूसरे व्यक्ति से मिलता है, तो वो सोचेगा कि ये व्यक्ति जो है मेरे लिए क्या करेगी, ये व्यक्ति मुझे कैसा फायदा करेगी, ऐसे सोचेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने हृदय के आनंद को प्राप्त किया है, तो वो व्यक्ति जब दूसरे लोगों से मिलेगा तो वो क्या सोचेगा कि मैं इस व्यक्ति के लिए क्या कर सकता हूं, मैं इसको कैसे मदद कर सकता हूं। तो वो फर्क है। तो वो हृदय का शुद्धिकरण जो है, हमें जब मंदिर में आते हैं तो ये मंदिर में आते हैं जो भगवान की जो विग्रह है, भगवान का जो नाम है, उससे हमें ये प्राप्त होता है हृदय का शुद्धिकरण। तो इसलिए बताया जाता है कि कैसे ये जो ज्ञान था, आध्यात्मिक ज्ञान जो है, ये ज्ञान जो समाज का जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो लोग समाज को लीड कर रहे हैं, उनके पास होना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि वो लोग अगर जो समाज को दिशा दिखा रहे हैं, वो लोगों के पास अगर ये ज्ञान नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो लोग जो है उनके नीचे जो लोग हैं उनका क्या करेंगे, शोषण ही करेंगे वो, तो उनके पास ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम भी जो है वो जो किसी ना किसी तौर पे जो है वो हम समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, है ना। हम जो घर में है माता पिता है वो अपने बच्चों को मार्गदर्शन कर रहे, दिशा दिखा रहे उनको। कोई व्यक्ति जो है कोई राजनीति में कोई समाज को दिशा दिखा रही है। कोई जो स्कूल में पाठशाला में जो टीचर है वो समाज का नेतृत्व कर रही है। अगर ये लोगों के पास ये ज्ञान नहीं रहेगा तो ये लोग क्या करेंगे, अपने नीचे वाले जो लोग हैं उनको क्या करेंगे, अपनी अपनी इच्छाओं के लिए अपनी जरूरतों के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे। इसलिए भगवद गीता बोलती है कि एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदुः। तो ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान जो राजर्षि उनके लिए था, क्योंकि वो समाज को दिशा दिखा रहे हैं। तो उनका हृदय अगर शुद्ध रहेगा तो अपने नीचे वाले जो लोग हैं उनको भी अच्छा मार्गदर्शन करेंगे, उनका शोषण नहीं करेंगे वो लोग। तो इस प्रकार से, और इतना ही नहीं, जब ये अपने हृदय का शुद्धिकरण हो जाएगा तो हम जो भगवान की योजनाएं हैं वो भगवान की योजनाओं के साथ हम उसको जान सकते हैं। जैसे भगवान ने ये पूरे संसार को बनाया है, तो ये संसार में जो है हम देखते हैं ये जो पेड़ पौधे जो है, ये पेड़ पौधे जो कैसे कार्य करते हैं, वो क्या करते हैं, जो दिन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और मनुष्य को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो कैसे मनुष्य जो और जो ये पूरी सृष्टि है कैसे कार्य कर रही है। लेकिन हम जो है हम अपनी योजनाएं लेके आते हैं और हम क्या करते हैं, पूरा जो है औद्योगिकीकरण जो है, शहरीकरण जो है, इससे क्या हो रहा है, इससे बड़े पैमाने पे हम जो है पेड़ काट रहे हैं। तो पूरा जो पर्यावरण का जो संतुलन है वो संतुलन क्या कर रहे हैं, हम पूरी तरह से बिगाड़ रहे हैं। लेकिन जब हमारा हृदय शुद्ध रहेगा तो हम भगवान की योजनाओं को समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं तो हम अपनी योजनाएं जो है उसको ही लेके चलेंगे। तो इस प्रकार से केवल भगवान के जो नाम है उसके साथ साथ जो मंदिर में जो अर्च विग्रह है वो भी क्या करते हैं, हमारे हृदय का शुद्धिकरण करते हैं। जब हम उनका जब दर्शन लेते हैं तो हम इस भौतिक आंखों से जो अपने चर्म चक्षु है, तो ये चर्म चक्षुन से हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। जो भगवान जो सच्चिद आनंद है उनका दर्शन जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन शास्त्र हमें बताता है, शास्त्र के आधार पे हम जब समझ सकते हैं कि कैसे वही भगवान जो है वो एक अर्च विग्रहों के रूप में अपने सामने प्रकट हो गए, तो भागवतम में बताया गया है कि कैसे आप जो ये है, ये जो बहुत ही सुंदर श्लोक है, तो श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है कि कैसे ये जो शास्त्र श्रीमद् भागवतम में वर्णन की कि 8 वस्तुओं से हम ये अर्च विग्रह जो है बना सकते हैं। तो बताया कि शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकति मनोमयी मनीमयी प्रतिमा अष्टधा स्मृति। तो इसमें बताया कि ये 8 चीजों से हम भगवान के जो विग्रह है उनको बना सकते हैं। तो ये शास्त्र है, शास्त्र के अनुसार जब हम एक देखते हैं ये जो विग्रह बनाते हैं तो स्वयं भगवान वहां पे प्रकट हो जाते हैं। और उनके जो शुद्ध भक्त है, ये शुद्ध भक्त जब उनकी उनको अपने अपनी अंदर जो उनके अंदर जो प्रेम है भगवान के प्रति, और जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो भगवान वहां पे प्रकट हो जाते हैं। तो शैली यानी जो पत्थर है, पत्थर से हम ये मूर्ति बना सकते हैं। जो दारुमयी यानी जो लकड़ी है वुड, उससे हम ये मूर्ति बना सकते हैं। लोही यानी धातु से ये मूर्ति बना सकते हैं। लेप्या यानी जो मिट्टी है ये मिट्टी से बना सकते हैं। लेख्या यानी आप पेंटिंग करके उसकी मूर्ति बना सकते हैं। मनोमयी या मन में हम भगवान की जो प्रतिमा है उसको हम मन में ला सकते हैं और उनका पूजन कर सकते हैं। और मणिमयी जो रत्नों से हम ये मूर्ति बना सकते हैं। तो ये 8 प्रकार से जब ये शिल्प जो है शिल्प शास्त्र में इसके अनुसार ये कार्य जब मूर्ति बनाते हैं और उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो स्वयं भगवान जो है वहां पे प्रकट हो जाते हैं अपने भक्तों के प्रेम को स्वीकार करने के लिए। और वहां पे प्रकट हो जाते हैं और वो स्वयं वो वो कोई भगवान का रूप जो है कोई माध्यम नहीं है, तो स्वयं कृष्ण वहां पे खड़े हैं, तो इस प्रकार से। और जब उनका हम दर्शन करते हैं तो क्या होता है, तो हमारे हृदय का शुद्धिकरण जो है वो शुद्धिकरण होता है। तो इस प्रकार से बताया गया कि कैसे ये शास्त्र में बताया। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कैसे ये जो मंदिर में जो विग्रह है ये स्वयं कृष्ण है, अधिकृत है वो, है ना। तो बता दे कि कैसे, पोस्ट बॉक्स ऑफिस का उदाहरण देते वो। तो हम जो जो क्या बोलते पत्र जो जो पोस्ट जो लेटर जो हम डालते हैं, पहले अभी तो सब ईमेल आ गया, व्हाट्सएप आ गया, फ़ोन, इतने सारे सबके पास फ़ोन है, तो हम ये जो कोई खत नहीं लिखता है ना, तो लेकिन पहले खत से ही हम एक दूसरे को व्यवहार करते थे। तो जो खत जो है आपको किस में डालना पड़ेगा, वो जो पोस्ट बॉक्स ऑफिस ने जो लाल डब्बा वहाँ पर रखा है तो उसी डब्बे में आपको डालेंगे, तो क्या होगा, वो खत वहाँ पर पहुँच जाएगा, उसके ऊपर जो एड्रेस हमने लिखा है वहाँ तक पहुँच जाएगा वो। तो अगर कोई मैं मेरा एक डब्बा रख दूंगा वहाँ पे और उसको लाल कलर मार दूंगा तो, और उसके अंदर वो खत डाल दूंगा, तो जाएगा क्या वो? नहीं जाएगा, क्योंकि पोस्ट बॉक्स ऑफिस ने उसको अधिकृत किया है। तो उसी प्रकार से ये विग्रह जो है, ये विग्रह कैसे हैं, अधिकृत विग्रह है। और यहाँ पे क्योंकि शुद्ध भक्तों ने उनको वहाँ पे आह्वान किया, उनके प्रेम से पुकारा है, तो वहाँ पे प्रकट हो गए वो, और ये पूरे शास्त्रों के अनुसार वो बने गए हैं। तो आजकल हम देखते हैं गणेश गणपति का जो उत्सव रहता है वहाँ पे जो गणपति की जो मूर्ति कैसे बनानी है उसका शास्त्र में बहुत सुंदरता से वर्णन किया है। लेकिन हम देखते हैं कि आजकल अलग अलग मूर्तियाँ आती रहती है ना, कोई जो मूर्ति है हाथ में क्रिकेट बैट लेके कर रही है, या कोई गणेश जी की मूर्ति, उसका वाहन जो है कौन सा है, चूहा है ना। लेकिन हम देखते हैं कि वो गणेश जी की मूर्ति जो है मोर के ऊपर बैठी है, या कोई दूसरा वाहन उसके ऊपर बैठी है। तो अलग अलग अपने मन के हिसाब से हम कोई मूर्तियाँ बनाएंगे तो वो जो है अधिकृत नहीं है, और वो हम कितनी भी वहाँ पे जाके फूल चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, लेकिन वो स्वीकार भी नहीं होंगे, वो सब क्या होगा, व्यर्थ ही जाएगा। तो ये अधिकृत मंदिरों में आके हम जब ये भगवान के जब दर्शन करते तो क्या होता है, हमारे हृदय का जो है शुद्धिकरण होता है। तो इस प्रकार से बताया गया है कि कैसे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान जो है वो भगवान सब जगह है, तो हमें मंदिर में क्यों जाने की आवश्यकता है, बराबर ना। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान सब जगह है, लेकिन हम उनको अनुभव कर सकते हैं सब जगह, हम अनुभव नहीं कर सकते उनको सब जगह, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, मंदिर में ही जाना पड़ेगा। जैसे बताया कि पानी जो है हवा में सब जगह है, लेकिन पानी हवा में है, वो वाष्प के रूप में हवा में है, लेकिन हम अपनी जबान बाहर निकाल के वो पानी को ले सकते हैं क्या, अनुभव कर सकते हैं उसको, पी सकते हैं, अपनी प्यास बुझा सकते हैं, नहीं बुझा सकते, हमको नल के पास ही जाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से हमें मंदिर में आके ही भगवान के दर्शन लेने पड़ेंगे। अभी हमारी बद्ध अवस्था में मंदिर में आना पड़ेगा, वो जरूरत है हमारी। तो इस प्रकार से बताया कि कैसे लोग जो है अलग अलग कारणों से मंदिर में आते हैं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति जो है एक भय, अलग अलग स्तर है, एक भय का स्तर है ना, कि मुझे जाना पड़ेगा, मंदिर में जाना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे पाप कर रहा हूँ, थोड़ा उससे बचना है तो थोड़ा मुझे मंदिर जाना पड़ेगा, कुछ तो नहीं तो मेरे साथ कुछ तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए मंदिर में जाना चाहिए, भय, एक लोगों के मन में भय रहती है। दूसरा है, उससे थोड़ा बड़ा अच्छा स्तर है, वो है इच्छा का, कि लोगों के मन में बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं और वो इच्छाओं की पूर्ति करनी है, तो इसलिए मुझे मंदिर में जाना है ना? और उससे भी थोड़ा अच्छा एक स्तर बताया गया है, वो है स्तर कर्तव्य का, कि मेरा कर्तव्य बनता है, मैं क्योंकि मुझे हर एक चीज जो मिली है मेरे जीवन में, ये जो सूरज जो रोशनी दे रहा है, मैं जो पानी पी रहा हूँ, मैं जो अनाज खा रहा हूँ, हर एक चीज़, मैं जो सांस ले रहा हूँ इसके लिए हवा जो है, वो हर एक चीज़ जो है वो भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हो रही है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि क्या करना चाहिए, मेरी कृतज्ञता जो है उनसे व्यक्त करनी है, तो ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन उससे भी ऊंचा स्तर जो है प्रेम का, तो वो प्रेम का स्तर जो है, क्योंकि मुझे भगवान से प्रेम करना है, मुझे प्रेम है उनसे, तो अपनी भौतिक इच्छाओं को हम लेके मंदिर में आएंगे, लेकिन वो भौतिक इच्छाओं की जो शुद्धि है वो हमें मंदिर में आके होगी, तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। भौतिक इच्छाओं को पूर्ति के लिए हम मंदिर में आना, ये तो अच्छा ही है, लेकिन उससे भी अच्छा क्या है, वो भौतिक इच्छाओं की जो शुद्धि है वो हो जाए और हम सच में जो प्रेम के स्तर पे भगवान को प्रेम प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पे आ जाए। तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हमने देखा, जय श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी भगवान की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मंदिर में आने की आवश्यकता क्यों है, हमें क्यों मंदिर जरूरी है। तो अभी समय भी हो गया है, अभी हम यहाँ पे सुंदर आरती होगी, वो आरती अटेंड करेंगे और फिर उसके बाद सबके लिए महाप्रसाद की व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।